कि आपका भी हमारे पास कोई भी अगर क्लाइंट आता है तो हम उस फाइल को अपनी फाइल समझ के ही उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें और अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट लेके उनको दें जिसका उनको फायदा हो। हम लोग लैंडर की तरफ से प्ले नहीं कर रहे होते, हम लोग जब आप हमें हायर करते हो तो आपकी तरफ से प्ले कर रहे होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जाए, क्योंकि आपको फायदा होगा, आपको अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी, आपकी मॉर्गेज जल्दी पे होगी तो आप हमारे साथ फ्यूचर में काम करोगे। अगर हम लोग आपको कहीं पे स्टक कर देंगे, आपको कहीं पे हम लोग ऐसा बुरी तरह से स्टक कर देंगे जी कि आप प्राइवेट लेंडर पे मॉर्गेज पे करते जा रहे हो और वहां से निकल ही नहीं पा रहे, तो ऑब्वियसली आप दोबारा कभी भी हमें कॉल नहीं करोगे, आप हमें अच्छे लफ्जों से भी याद नहीं करोगे, बुरे ही लफ्ज हमारे लिए जो है होंगे। वो इस तरह से नॉर्मली मार्केट में चल रहा है, इस तरह से मार्केट में चल रहा है, क्योंकि आशा जी होता पता क्या है, हम लोग डेली बेसिस पे देख रहे हैं और क्लाइंट अपनी मिस्टेक नहीं उस पर मानता। होता क्या है कि क्लाइंट को पता है उनकी क्लोजिंग आ रही है, वो ब्रोकर को फाइल देते हैं और फाइल का फॉलोअप ही नहीं करते, वो फॉलोअप नहीं करते, लास्ट मोमेंट तक फाइल का वेट करते हैं वो। तो जब लास्ट डे पे जाकर उनसे ब्रोकर कहता है जी कि आपकी मॉर्गेज नहीं होगी, आपको प्राइवेट लेंडर से पे मॉर्गेज लेनी पड़ेगी, तो फिर वो जो है ना कहते हैं जी हमारे साथ ये हो गया। देखो जब आपको पता था कि आप लोगों की मॉर्गेज आ रही है, आपने ब्रोकर को फाइल दी है, आपने अपनी फाइल का फॉलोअप क्यों नहीं किया? अगर आप वक्त से पहले फॉलोअप करोगे तो आपके पास टाइम होगा, आप ब्रोकर चेंज करके दूसरे ब्रोकर के पास जा सकते हो, किसी से कोई अपनी ऑप्शंस को डिस्कस कर सकते हो कि क्या कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद है आपके पास। लेकिन अगर आप खुद लास्ट मोमेंट पर लेके जाओगे तो फिर आपके पास कोई चांस नहीं बचेगा, आपको प्राइवेट लैंडर से ही अपनी मॉर्गेज करवाना पड़ेगी। और फिर जब प्राइवेट लैंडर की बारी आती है फिर वहां पे आपको इंटरेस्ट रेट भी हाई पे करना पड़ता है और लैंडर की लैंडिंग फी भी पे करनी पड़ती है। तो इसलिए मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों की क्लोजिंग आ रही है, ये मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि आज अभी भी रिसेंटली मेरे पास एक ऐसा ही केस आया हुआ है, उनकी क्लोजिंग जो है वो 4 महीने पहले थी, उन्हें पता था कि मेरी 4 महीने के बाद क्लोजिंग आ रही है, उन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया। अब जब 1 महीना रह गया तो अब उन्होंने बताना शुरू किया जी कि वो तो कह रहे हैं जी कि प्राइवेट लेंडर पे जाना पड़ेगा, ये हो जाएगा जी, वो हो जाएगा। अब जी मेरी तो नेक्स्ट वीक में क्लोजिंग है, अब मैं क्या करूं? देखो आप इतना क्लोज आ गए हो तो ब्रोकर आपको लेके ही इसलिए है कि आपके पास ऑप्शन बची कोई नहीं है, आपको प्राइवेटली क्लोज करवाना पड़ेगा। 40% वो डाल रहे हैं क्योंकि उनके घर की अप्रेजल भी नहीं आई, उनके घर की अप्रेजल भी नहीं आई। ब्रैडफोर्ड के अंदर घर लिया हुआ उन्होंने, 900,000 का घर है, उनकी 760 की अप्रेजल आ रही है, 140 का डिफरेंस। ऑन टॉप ऑफ दैट उनको 760 के हिसाब से अपनी डाउन पेमेंट भी करनी पड़ रही है।
वही बात है ना कि बिल्डर बिल्डर का तो कोई कुछ नहीं जाना, बिल्डर का तो कुछ भी नहीं जाना। शिराज आप अपना नंबर दे दीजिएगा, फोन नंबर रिपीटेडली दीजिए, बल्कि अपना सेल फोन दीजिएगा, कंसल्टेशन के बारे में बताइए और कब आपको कॉल किया जा सकता है, कहाँ आपसे मुलाकात हो सकती है। एक और चीज जो मैं चाहती हूँ कि अगर किसी की इक्विटी है घर में, इस मार्केट का जब बाजू का यू नो यू कैन गेट अ गी डील समवेयर, डू नॉट इन्वेस्ट इन दी न्यू कॉन्डोज और न्यू हाउसेज में, बिल्कुल मत इन्वेस्ट करें। इस वक्त बिल्डर आपको इंसेंटिव देगा और बाजू का तो हम लालच में आ भी जाया करते होते हैं। तो बताइए ये 2-3 चीजें कि अगर किसी का कोई इन्वेस्टमेंट पे हो या कोई घर लेना चाहे, अगर वो अपने घर में रीफाइनेंस करा के अपने घर से ही पैसा निकालना चाहे तो कैसे निकाल सकता है, तमाम चीजें
जी। सबसे पहले तो ये जो बिल्डर वाली बात है आरफा जी, अगर वो क्लाइंट वहां पे छोड़ते तो बिल्डर उसके ऊपर सू कर देगा, ये सभी को पता है।
या
डिपॉजिट पे जाएगा जाएगा, वो अपने जो उसको लॉस होगा वो भी रिकवर करेगा। इसलिए अगर आप लोगों की क्लोजिंग आ रही है, आप अपनी ऑप्शंस को डिस्कस करना चाह रहे हो, आप कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर नोट कर लो जी, शिराज शफी का कॉल मॉर्गेज 416-502-8000, और मेरा सेल नंबर है 2892426286। हम लोग ऑप्शंस डिस्कस करने के, गाइड करने के, आफा जी किसी किस्म के कोई चार्जेस चार्ज नहीं करते, कंप्लीट ऑप्शन प्रोवाइड की जाती है। आगे आपकी अपनी मर्जी होती है कि आपने किस ऑप्शन के ऊपर जाना है। हम लोग 1, 2, 3 जितनी भी ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल होती हैं आपको देते हैं, फिर आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हो कि यार ये ऑप्शन मेरे लिए बेहतर है, इस पे मुझे कम लॉस हो रहा है, इसमें मैं जाना चाहूंगा, तो उसी ऑप्शन के ऊपर प्रोसेस करते हैं आपकी फाइल को। अब हमारे वो भाई आफा जी जिनके पास घर मौजूद है और उनके घरों के अंदर इक्विटी पड़ी हुई है, जिस तरह से आजकल की सिचुएशन चल रही है सभी को पता है किसी भी टाइम पे आपको फंड्स की जरूरत पड़ सकती है। जिनके बच्चे स्कूल गोइंग है या यूनिवर्सिटी गोइंग है उनको फीस के लिए जरूरत पड़ सकती है, किसी की अगर बेसमेंट अनफिनिश है उसको जरूरत पड़ सकती है। तो मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी जो इक्विटी है उसके अगेंस्ट आप ही लोग होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट बनवा के रख लें। ये इसी तरह से काम करती है जैसे आपके क्रेडिट कार्ड काम करते हैं, लेकिन ये चीपर है एज कम्पेयर टू क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का 19% से लेके 24% 25% तक आप इंटरेस्ट पे करते हो, यहाँ पे ये अगर आपकी इनकम नहीं है तो हमारे पास ऐसे लेंडर हैं जो विदाउट इनकम की वेरिफिकेशन की आपको करके दे सकते हैं, और आप अच्छे इंटरेस्ट रेट के ऊपर ये अपनी होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट बनवा के रख सकते हो। जितना आप इस्तेमाल करोगे उतने के ऊपर ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बाकी जो बची होगी वो एज इज पड़ी रहेगी। इस लाइन ऑफ क्रेडिट को आप किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हो, अपनी बेसमेंट को बनाने के लिए यूज कर सकते हो, अपने बच्चों की यूनिवर्सिटी की फीस के लिए यूज कर सकते हो, अपने हाई डेट जो हो आपने क्रेडिट कार्ड यूज किए हो उनको पे करने के लिए यूज कर सकते हो, किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हो। इस बारे में किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर नोट कर लो जी, शिराज शफी का कॉल मॉर्गेज 416-502-8000, और मेरा सेल नंबर है 2892426286 2892426286। आप जी एक और प्रोग्राम है वो है जी जो ओल्ड एज लोग हैं उनके लिए, जो हमारे बूढ़े माँ बाप हैं उनके लिए बेसिकली, अगर वो अपने बच्चों को उनके घरों के अंदर इक्विटी पड़ी हुई है और अपने बच्चों की हेल्प करना चाह रहे हैं तो रिवर्स मॉर्गेज के जरिए वो अपने घरों में से इक्विटी निकाल के अब वो पैसे अपने बच्चों को गिफ्ट कर सकते हैं, उनकी डाउन पेमेंट में हेल्प कर सकते हैं, उनकी यूनिवर्सिटी की फी में हेल्प कर सकते हैं, किसी भी चीज के लिए अगर उनके बच्चों को जरूरत है तो वो इस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं। अगर उनकी एज 60-65 प्लस है तो अपने घर के अगेंस्ट रिवर्स मॉर्गेज ले सकते हैं अच्छे इंटरेस्ट रेट के ऊपर। दो ऑप्शन होती हैं, आप मंथली मॉर्गेज पर भी जा सकते हो, आप जो ना रिन्यूअल के ऊपर भी पे कर सकते हो, लमसम भी पे कर सकते हो, दोनों ऑप्शन मौजूद होती हैं। तो किसी को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो कॉल कर सकते हैं शिराज शफी का कॉल मॉर्गेज 416-502-8000, और मेरा सेल नंबर है 2892426286। दोबारा नोट कर लें 2892426286। ओके जी,
शिराज शफी का आप नंबर नोट कर लीजिएगा। शिराज एक बार फिर से अपना सेल फोन दे दीजिएगा, मैं आपको सेल दे रही हूँ उनका 2892426286 उनका नंबर है शिराज शफी का। आप अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक इनसे मिल सकते हैं। शिराज आपका बहुत शुक्रिया भाई जान, थैंक यू। वंडरफुल मैन, वी आर टूगेदर फॉर क्वाइट सम टाइम, 4-5 साल हो गए, 6 साल। आई रिक्वेस्ट कि शिराज शफी को अपनी मॉर्गेज के लिए मौका दीजिएगा। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ आपको किसी किस्म का कोई पेशमानी नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। शिराज से हमने बात कराई, करामतुल गौरी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, उनसे बात कराएंगे। और करामतुल गौरी के साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि अफगान ग्रिल इज अ वेरी नाइस रेस्टोरेंट और इट्स रन बाय अ फैमिली। बेशुमार अफगान रेस्टोरेंट्स हैं, मगर इस रेस्टोरेंट की एक खूबसूरती है कि दे सर्व अफगान कढ़ाई एज वेल। यस, टिक्काज और तंदूरी चिकन और स्क्यूअर्स इनके मौजूद होते हैं, कोफ्ता कबाब जिसको हम सीख कबाब कहा करते हैं वो है, सैलड इनकी बड़ी फ्रेश होती है, चपली कबाब बड़ा मजे का होता है, मगर दे डू हैव एन एडिशनल स्टफ जो कि मैंने कमी देखी अफगान रेस्टोरेंट्स में, विच इज कढ़ाई। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अफगान ग्रिल के ऊपर पहुंचिएगा। ये 110 ट्रेडर्स बुलेवार्ड पे है, आप समझ लीजिएगा कैनेडियन ह्योर इंटेरियो के दरमियान, जस्ट साउथ ऑफ हाईवे 401। तो 120 ट्रेडर्स बुलेवार्ड पे अफगान ग्रिल को नाम याद रखिएगा। अगर आपने घर में पेंट करना है या अगर आपने एक्सटर्नल पेंट करना है, इंटरनल पेंट करना है, दीवार है आपने एसेंट वॉल कोई बनवानी है, या आपके घर में डेक है आप स्टेन वगैरह करना चाहते हैं, बहुत अच्छा क्वालिटी का काम। एंड दे कवर योर फ्लोर्स, दे कवर योर कारपेट, सो देयर नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप एनीवेयर एल्स। वेरी प्रोफेशनली काम करते हैं। और आप रब्ता कीजिए जीटी पेंटर्स 6472711974, 271-1974 उनका नंबर है। अच्छा, और अगर आपने एक प्लॉट किया हुआ है और आप चाहते हैं कि बस मैंने अब कस्टम बिल्ड करना है, तो अरहम बिल्डर्स एंड रेनोवेटर्स का नाम लेती हूँ। अरहम बिल्डर्स एंड रेनोवेटर्स जो हैं, फ्रॉम द स्क्रैच आपका घर शुरू से बनाएंगे, जिसमें परमिट्स लेना वो तमाम उनकी रिस्पांसिबिलिटी होगी। या अगर आप पुराने घर में कोई एडिशन करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स अरहम बिल्डर्स एंड रेनोवेटर्स के नाम को याद रखिएगा, ग्रुप ऑफ पीपल हैं। तो आप रेनोवेशन के लिए, नया घर बनाने के लिए फ्रॉम स्क्रैच रब्ता कीजिए अरहम बिल्डर्स। नंबर बड़ा आसान है, 416-841, देखिए 841 तो आपको नहीं भूलेगा, 5825 5825 ये चार नंबर याद करने पड़ेंगे, 5825 5825। इसको भी याद करना कोई मुश्किल नहीं है, शुरू और आखिर में पांच है, दरमियान में 1984 और 1981 के दरमियान आ जाए 1982, हूं मैनू नहीं कभी भूलेगा। ठीक है, अच्छा जी एक गीत नहीं, टॉप ऑफ टावर का वक्त हुआ जाता है, फिर मुझे एक गीत की फरमाइश मिली, बहुत प्यारी बहन, बहुत प्यारी बहन बिल्कीस है, बिल्कीस ने एक गीत की फरमाइश की, गाना भी बहुत प्यारा था, मैंने कहा भाई अब मैंने तो सुना के ही दम लेना है, बट पहले चंद स्पॉन्सर, स्टे ट्यून्ड।
तो अनु पर्सनल सपोर्ट वर्कर क्यों बनना चाहते
हैं? कैसे हैं आप?
ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ontario.ca/gopsw ਤੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਓਨਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुड़ सिखाओ ना।
वही बात सादा सी है, हमारे पास दो गाड़ियाँ और एक घर है, और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है, और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह, 6472903773 6472903773। ट्रक ड्राइवर भाइयों, अब US और कनाडा में अनलिमिटेड डाटा वीवो टेलीकम्युनिकेशंस के साथ फुल स्पीड, नो रुकावट, सफर बिजनेस का हो या शौक का, वर्ल्ड वाइड ई सिम डाटा प्लान के साथ इंटरनेट हमेशा रेडी। ट्रैवल कर रहे हो इंडिया, पाकिस्तान या हज या उमरे के लिए, वीवो टेल के साथ हमेशा रहो ऑनलाइन, दूर दराज इलाका कोई प्रॉब्लम नहीं। घर हो या केबिन, वीवो टेल की हाई स्पीड इंटरनेट चलती है दुनिया के किसी भी कोने में। विजिट करें vivotel.com या कॉल करें 416-243-9836 416-243-9836। कनेक्शन आपका दुनिया के साथ। कुछ हलाल पाकिस्तानी फूड खाना है ऐसा जो दिल को लगे।
अरे मजेदार कड़ाही, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन रोल, बटर चिकन, किड्स मेन्यू, बहुत कुछ, टेक आउट डाइनिंग या फिर कोई स्पेशल इवेंट, हर चीज पॉसिबल। और हाँ, कढ़ाई पॉइंट की सिग्नेचर डिशेस ट्राई करना मत भूलना।
मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया है।
तो फिर जाइए 285 सेंटेनियल पार्कवे, स्टोनी क्रीक, हैमिल्टन, 9056648866। याद रखना 9056648866।
कढ़ाई पॉइंट, स्टोनी क्रीक,
जहाँ हर मील एक सेलिब्रेशन है।
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा, वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 5196220660 जां quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
Quick truck you! खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157
देखा आमिर, तुम मेरा कभी माइक बंद करा जाते हो, कभी मुझे कहते माइक खोलो। अब जब खुलना होता है तो बंद हो जाता है, जब बंद होना तो खुल जाता है। एनीवेज, रहे ना रहे हम महका करेंगे, इस गीत की फरमाइश की हमारी बहुत प्यारी बहन बिलकीस साहिबा ने इसकी फरमाइश की। आए साहब, इस गीत को मैं आपकी तरफ लेकर के आती हूँ, आए इस गीत को हम सुनते हैं। अगर इस गीत के बारे में बात की जाए तो साहब ऑफ कोर्स वन ऑफ द फाइनेस्ट सॉन्ग, इंजॉय। तैयार रहिएगा जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब।
Thank you.
रहे ना रहे हम बहुत खूबसूरत, मगर साहब आज की दुनिया तो बहुत तेज हो गई है। लता जी ने जब ये गीत को गाया, फिर ममता से ये गीत था, लता मंगेशकर ने बहुत काम किया इस दुनिया के लिए, बहुत खूबसूरत गीत दिए। तो वो कहती है ना कि जब हम नहीं होंगे तो तुम हमें याद करोगे। आजकल की दुनिया तो बहुत फास्ट है, एक दिन आए और अगले दिन लोग भूल ही जाते हैं। रिसेंटली आप देखिएगा, आज मैं आपको बताइए कि बर्थडे के हवाले से 50th एनिवर्सरी ऑफ एप्स्टन, जेफरी एप्स्टन की आज उसको किताब को छाप दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इतना खूबसूरत एक औरत की बॉडी बना के उस पर अपनी और जेफरी एप्स्टन के की फीलिंग्स, बल्कि एक अम्बेसडर के यूके के एक अम्बेसडर हैं अमेरिका में, उन्होंने इनके 50th बर्थडे के ऊपर जो वर्ड्स लिखे थे, उन्होंने कहा दुनिया का बेहतरीन इंसान अगर मुझे मिला। फिर उन्होंने तस्वीरें जो भेजी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये वो शख्स है कि जब ये मिलता है तो वक्त नहीं गुजरता, वक्त बहुत तेजी से गुजर जाता है, ये फिर कुछ लोगों को हमारे पास छोड़ के चले जाता है जो बहुत शानदार होते हैं, और जब वो नहीं होता तो हम घंटों उसका इंतजार करते हैं। बाद में इन्होंने इसका भी लेटर बड़ा अजीब सा मिला बर्थडे के हवाले से, वेरी सैड। अल्लाह करे कि मैं और आप अच्छे लफ्जों में याद किए जाएं इस दुनिया को छोड़ने के बाद। आइए साहब मुलाकात की तरफ लेकर के चलती हूँ। बहुत शुक्रिया हमारे बहुत मुअज्ज़ज़ जनाब करामतुल्लाह वारी साहब। एक बात, जैसे भी मैंने लता जी का गीत सुनते हुए मैंने ये लफ्ज कहा है कि दुनिया बहुत फास्ट हो गई, और इस फास्ट दुनिया में आप इमेजिन कीजिएगा कि एक दिन हम हैं और अगले दिन लोग, मतलब दुनिया का मेला, इस मेले में हम दूसरे को भूल ही जाते हैं। देयर वाज अ टाइम के लोग एक दूसरे की कमी को महसूस किया करते होते थे। तो बहरहाल वक्त बहुत तेजी से गुजरता चला जा रहा है। मुलाकात की तरफ लेके चलती हूँ जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब, यहाँ पे हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आप लोग बहुत पसंद भी करते हैं मुझे, बहुत से लोग जब मिलते हैं। कल भी हमारे स्टूडियो में एक मेहमान आए हुए थे तो वो कहने की जी करामतुल्लाह गौरी साहब के आपके मैं प्रोग्राम बड़े गौर से सुनता हूँ। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, मगर इस दुनिया में इतनी नेगेटिविटी है, इतनी नेगेटिविटी है। अब आप देखिएगा हमास जब प्रमोट कर रही है तो क्या प्रमोट कर रही है? हमास यही प्रमोट कर रही है ना कि वी आर डूइंग इट फॉर, आई हैव डाउट्स क्योंकि आज भी बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने ये लफ्ज कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो शरायत पेश की है अगर उसको मान ले तो मैं, मतलब हर चीज खत्म हो सकती है। क्या है कि जिन लोगों को आपने मगवी किया हुआ, अगवा किया था, तमाम को छोड़ दें। अब आप बताइएगा कि अगर वो लोग जो गजा में मर रहे हैं, कितने बेशुमार लोग मर गए और पूरी दुनिया के कान पे जूनी रिंग रही कि हमास में भी औरतें मर रही हैं, हमास में भी बच्चे मर रहे हैं। आप उठा लें जर्मनी का मीडिया, उठा लें आप फ्रांस का मीडिया, उठा लें। मगर और कल हमने बल्कि आपके साथ एक वीडियो भी शेयर की थी जिसमें बर्तानिया के एक अस्पताल के बाहर ही बर्तानिया के लोगों को से बात की गई है कि गेस करो कि अगर बर्तानिया में ऐसा हो अगर अगर अगर, मगर उन्होंने आखिर में कहा कि आप तो सिर्फ गेस कर रहे हैं ना, मगर ऐसा दुनिया में हो रहा है और दुनिया को अवेयरनेस दी जा रही है। मगर जो मीडिया बायस मीडिया है वो अपनी आंखें खोलने का नाम ही नहीं ले रहा। तो इस नेगेटिविटी के बीच में बाज़ुकात कोई भी जब पॉजिटिव खबर आती है तो एक ताजा हवा के झोंके की मानिंद होती है। एनीवेज हमारा प्रोग्राम का अगला हिस्सा जो आपकी खिदमत पेश किया जाएगा इसमें जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब मेरे साथ होंगे। क्विक ट्रक लूप का मैं जिक्र करना चाहती हूँ। हमारे ट्रक वाले भाई बहन, पहले तो हम अमेरिका जाने का जिक्र करते थे, अलहमदुल्ला वो कहते हैं ना कुबड़े नूंग लाते पे थे, कुबड़े दा कुबड़ निकल गया। तो अभी अगर हमारे प्रोविंसेस के दरमियान अगर जैसे ही कप्स कम हुए हैं तो ट्रकरों ने इंशाल्लाह चलना है, कारोबार ने उसी तरह से इंशाल्लाह सेटल हो जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने ट्रक को क्विक ट्रक ट्यूब पे लेके जाए, हाईवेज के ऊपर इनके तमाम के तमाम सेंटर है। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर ऑल आवर स्पॉन्सर्स, और आपके रिस्क में इजाफा करें। आप ही के तवसुत से बहुत से लोगों की जॉब्स हैं, बहुत से लोगों के कारोबार हयात चल रहा है। तो क्विक ट्रक ट्यूब नैपनी वाली इनकी लोकेशन जो है एग्जिट 513 के ऊपर आपको क्विक ट्रक ट्यूब पर, दे आर ऑन द वेस्ट ईस्ट एवरीवेयर। आप क्विक ट्रक ट्यूब से उनकी सर्विसेज के बारे में 5196220660 पे पता भी कर सकते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम को पायल ज्वेलर्स खुला है, आज भी खुला है, दे ओपन 7 days a week। हाँ पहले कभी सोचा भी नहीं था, मंडे को हर ज्वेलरी स्टोर हर दुकान बंद होती थी, बट नाउ पायल बैंक्वेट हॉल ओपन 7 days a week। अगर आपने आउंस लेना या सोने की खरीदारी करनी, इवन अगर आपने अपना सोना बेचना भी है या किसी किस्म की रिपेयर करवाना चाहते हैं, तो आप मुलाकात कीजिएगा हमारे असलम भाई भाई से, पायल ज्वेलर्स, ये एयरपोर्ट रोड एंड विलियम्स पार्कवे के कॉर्नर के ऊपर आपको मिलते हैं। यहाँ पे टिम हॉर्टन्स भी है, यहाँ पर नो फ्रिल्स भी है, तो आपको वहां जाना होगा। आई हैव माई वंडरफुल गेस्ट हियर आज के प्रोग्राम में जनाब करामतुल्ला गौरी से बात करेंगे। इसकी एक और चीज कहती चलूं कि प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू वेरी मच। अनफॉर्चुनेटली हम अपनी अपनी जिंदगी में इतनी बुरी तरह से मगन है कि बाद चीजें जो करने की होती हैं वो करने का भी हमारे पास टाइम नहीं होता, बट डू सब्सक्राइब प्लीज, इट डजंट कॉस्ट यू। आज के प्रोग्राम में करामतुल्ला गौरी साहब से हम बात करेंगे पाकिस्तान की सूरत हाल है। कल ही आपको पता ही है कि हमारे एक परसों की बात है कि हमारे एक जज हैं, सीनियर जज हैं, जिन्होंने कहा कि पांच वकील जो हैं उनका नाम लेने को भी दिल नहीं करता। फिर उन्होंने ये भी जिक्र किया कि पांच वकील ऐसे भी हैं जिन्होंने परवेज मुशर्रफ के दौर में आपको याद है कि साइन करने से इनकार कर दिया था, यानी दे स्टूड फॉर समथिंग। तो ये बड़ा आजकल तश्वीश की बायस है कि क्या वजह है कि जजेस को इतना आसान कर लिया गया। जनाब करामतुल्ला गौरी साहब, इसके अलावा हम गजा की भी थोड़ी सी बातचीत आपके साथ जरूर करेंगे, पर पाकिस्तान की भी एक दो चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सर, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब करामतुल्ला गौरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, कैसे हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम बीबी, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है कि तंदुरुस्त तवाना हूँ। अभी जो तुम गीत सुना रही थी अपने सामईन और नाजरीन को,
रहे ना रहे,
तो उस पर मुझे नासिर काजमी का शेर याद आ गया। क्या खूब कहा था उन्होंने, दायम आबाद रहेगी दुनिया, दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा।
क्या बात है साहब,
हम न होंगे कोई हमसा होगा, तो दुनिया का तसलसल तो जारी रहता है, वो तो चलती रहती है।
उसने कहा ना कि रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कमल महकी हवा, वो तो अगर इंसान अच्छा बो जाएगा ना,
रिजाइयत का इजहार किया गया था उस पे। लेकिन मुझे जो साहब का ये कताब याद आ रहा है, उन्होंने क्या कहा था कि दुनिया का अजब दौर नजर आता है, बदला हुआ हर तौर नजर आता है, हैरत है कि आईना में जब देखता हूँ बूढ़ा सा कोई और नजर आता
है। आए, क्या बात है।
तो उस बुढ़ापे पर मुझे याद आया, मैं खुद भी बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन अगले हफ्ते को न्यूयॉर्क में अक्वाम तहदा की जनरल असेंबली का 80 साल इजलास शुरू होने वाला है। और अक्वाम तहदा की तासीस को, बुनियाद को 80 बरस हो गए। 80 बरस की ये यादगार तकाजा करती है कि ये जायजा लिया जाए कि अक्वाम तहदा ने अपने 80 बरस में क्या कारकर्दगी, क्या कारकर्दगी दिखाई है। आजकल जो सबसे बड़ा मसला है वो दुनिया के लिए वो गज़ा में इंसानों की हलाकत है, जेनोसाइड जिसको नाम दिया जाता है। और बजाय इसके कि दुनिया उस जेनोसाइड को खत्म करने की कोशिश करे, कोई ऐसी काबिल जिक्र कोशिश करे जिस पर वाह वाह की जा सकती हो, जिस पर तुम्हारे अल्फाज में जिसको पॉजिटिविटी से ताबीर किया जा सकता हो, हम ये देख रहे हैं कि यूरोप के बेशुमार मुमालिक ने ये ऐलान किया था कई हफ्ते पहले कि अक्वाम मुत्तहदा की जनरल असेंबली के इस इजलास में हम फलस्तीन की आजाद रियासत के वजूद को तस्लीम कर लेंगे। उसकी पेशबंदी करने के लिए अमरीका ने क्या किया, अमरीका ने यह किया कि फलस्तीन के जो उबूरी रियासत है, उबूरी हुकूमत है, उसके सदर को अपना वीजा देने से इनकार कर दिया। इस पर मुझे याद आया कि 1988 में اس وقت کے فلسطینی رہنما یاسر عرفات بھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنا چاہتے تھے. امریکہ نے انہیں بھی ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا, جس کے رد عمل میں جنرل اسمبلی نے یہ طے کیا کہ وہ اپنا اجلاس نیو یارک میں کرنے کے بجائے جنیوا میں کریں گے. جنیوا میں وہ اجلاس ہوا جہاں یاسر عرفات نے تقریر کی, اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے تقریر کے دوران ایک ہاتھ میں زیتون کی ایک شاخ اٹھا رکھی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ان کا پستول تھا. وہ ہمیشہ اپنی کمر کے گرد پستول باندھے رہتے تھے. انہوں نے اپنے سامعین سے سوال کیا کہ تم کیا پسند کرتے ہو کہ میں اس شاخ زیتون کو اپنے ہاتھ میں رکھوں یا اپنے ہاتھ میں پستول لوں. اس کے بعد ہی 1988 کے اواخر میں الجزائر میں فلسطین کی ریاست کے قیام کا اعلان ہوا تھا. میں اس اجلاس میں موجود تھا اس لیے کہ میں اس وقت پاکستان کا سفیر تھا الجزائر میں. وہاں یاسر عرفات نے اعلان کیا تھا آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا, اور خاص طور پہ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان نے ہمارا جس طرح سے ہمارے موقف کا ساتھ دیا ہے اس کے لیے ہم ہمیشہ پاکستان کے شکر گزار رہیں گے. اب دیکھو اس پس منظر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے امتحان کا ایک موقع آ گیا. امتحان میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ بیلجیم کی حکومت نے کچھ دن پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ فلسطینی ریاست کے صدر کو اپنا سفارتی پاسپورٹ دے دیں گے تاکہ وہ اس پر امریکہ کا سفر کر سکیں اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کر سکیں. لیکن کل بیلجیم کی حکومت نے اپنے اس اعلان کی خود ہی تنسیخ کر دی. انہوں نے کہا کہ ہم محمود عباس کو سفارتی پاسپورٹ نہیں دیں گے. اس پر مجھے یاد آیا کہ 1952 میں 1952 میں جب مراکش کے عوام اپنی فرانس سے آزادی کی جدوجہد کر رہے تھے تو ہم نے اس تحریک کے ایک جید رہنما احمد بلفریج کو اپنا سفارتی پاسپورٹ دیا تھا. یہ 1952 کی بات ہے. اور مراکش جب آزاد ہو گیا تو احمد بلفریج اس کے پہلے وزیر اعظم مقرر ہوئے. لیکن ہم نے صرف احمد بلفریج کی مدد نہیں کی تھی, ہم نے تیونس کے رہنما کو بھی اپنا سفارتی پاسپورٹ دیا تھا, اور انہوں نے اس پر سفر کر کے اس لیے کہ فرانس نے ان کو سفارتی پاسپورٹ دینے سے انکار کر دیا تھا, ہم نے اپنا سفارتی پاسپورٹ دیا جس پر انہوں نے دنیا بھر میں سفر کیا. اور ہم نے الجزائر کی تحریک آزادی کے رہنماؤں کو بھی اپنے سفارتی پاسپورٹ دیے تھے. احمد بن بلہ, شاید تمہیں یاد ہو, احمد بن بلہ اس تحریک کے جو الجزائر کی تحریک آزادی تھے اس کے رہنما تھے. 8 سال الجزائریوں نے اپنی آزادی کی جنگ لڑی تھی 1954 سے لے کر 1962 تک, اور ان 8 سالوں میں 15 لاکھ الجزائری شہید ہو گئے تھے, ہلاک ہو گئے تھے اس جنگ آزادی میں, اس لیے کہ فرانس نے جو مظالم الجزائر کی جنگ آزادی کے دوران کیے تھے ان کی نظیر نہیں ملتی. وہی جو آج इसराइल फलस्तीनियों के साथ कर रहा है वही फ्रांस ने अलजजायर के हुर्रियत पसंदों के साथ किया था। और अहमद बिन बिल्ला आखिर में कामयाब हो गए, 1962 में अलजजायर आजाद हो गया। अलजजायर की आजाद हुकूमत के पहले सदर अहमद बिन बिल्ला थे। उसके बाद अलजजायरियों में आपस में इख्तलाफ हो गया, अहमद बिन बिल्ला को जिला वतन कर दिया गया। मैं जब वहां पर सफीर था तो उस दौर में वो वापस अलजजायर आए और उन्होंने खुद ख्वाहिश का इजहार किया कि वो मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं। और मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने मुझे वो सिफारती पासपोर्ट दिखाया जो 1954 में हमने अहमद बिन बिल्ला को दिया था और कहा कि मैं ता हयात इसके लिए पाकिस्तान का शुक्रगुजार रहूंगा। तो बीबी मैं ये तारीख क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि अब हमारे लिए इम्तहान का मौका है कि क्या हम में इतनी अखलाकी जुरत है कि हम फलस्तीनी रियासत के सदर महमूद अब्बास और उनके रफाका को अपना सिफारती पासपोर्ट दे सके। और मैं खुद इसका जवाब देता हूं, हम में हमारी मौजूदा कयादत में वो जुरत नहीं है जो हमारी उस कयादत में थी जो पाकिस्तान में अस्करी ताले आजमाओं की एडवेंचरिज्म के से पहले थी। हर ताले आजमा सियासी रहनुमाओं को ताना देते हुए उन पर इल्जाम लगाते हुए यही कह के उसने इख्तदार पर कब्जा किया कि सियासतदान नाकाम हो चुके हैं। लेकिन मैं जो तुमको तारीख बता रहा हूं वो पाकिस्तान के इब्तदाई 10 सालों की तारीख थी जब सियासतदानों को मुकम्मल इख्तियार था मुल्क पर हुकूमत करने का। 1958 में पहला मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगा था और उसके बाद किसी पाकिस्तानी हुकूमत को ये मजाल नहीं हो सकी कि वो कोई ऐसा काम करे जिसे अमेरिका की रजाबंदी हासिल न हो। और अभी एक आखिरी जुमला मैं एक बता दूं कि अभी चंद दिन पहले अक्वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने इत्तफाक राय से सिर्फ दो ममालिक ऐसे थे जिन्होंने उसके करारदाद के हक में वोट नहीं दिया और वो दो ममालिक थे अमेरिका और इसराइल। अक्वाम मुत्तहिदा की एक अराकीन ने यह फैसला किया कि अगर फलस्तीनियों को अमेरिका अपने मुल्क में दाखिल होने के लिए वीजा नहीं देता तो अक्वाम मुत्तहिदा का ये इजलास 80वां इजलास उसी तरह जिस तरह 1988 में जनीवा में हुआ था न्यूयॉर्क के बजाय जनीवा में मुनाकिद किया जाए।
बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से बताया, मगर बस मैं मुझे आपके पास बहुत नॉलेज है, मैं आपको कहीं काटना नहीं चाहती थी, मगर मुझे यूं लगता है जैसे हम मौका ढूंढ रहे होते हैं कि हमने सिर्फ पाकिस्तान की कैसे बुराई करनी है दुनिया के
नहीं,
सारे
बुराई नहीं है।
नहीं देखिए जी, पाकिस्तान की प्रॉब्लम का अगर जिक्र करते हैं ना तो पाकिस्तान बनने के फौरन बाद एक साल में कायदे आजम की असैसिनेशन होती है, उसके बाद 52 तक आगे आ जाएं तो सारा का सारा सफाया हो गया था, लियाकत अली खान तक का सफाया हो गया हुआ था। अयूब खान साहब को वो एलिजिबल नहीं भी थे तो मगर उनको इस पोजीशन पे पीछे तो देर आर पीपल हु आर वर्किंग फॉर समथिंग। द डे व्हेन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग नेगेटिव फोर्सेस स्टार्टेड वर्किंग विद, इंशाल्लाह पाकिस्तान के पर अल्लाह करम करेगा। तो 52 में अगर पाकिस्तान की ये सिचुएशन थी तो इसका मतलब पीछे जो नेगेटिव हाथ थे तो तब भी इट वॉज जस्ट अ बिगिनिंग। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं था, वसायल इतने नहीं थे, मगर वो नेगेटिव फोर्सेस तो उस वक्त भी पाकिस्तान के साथ थी।
नेगेटिव फोर्सेस थी, लेकिन जो तुम नेगेटिव और पॉजिटिव का बहुत जिक्र करती हो, पहली बात तो ये कि जिसको तुमने बुराई कहा وہ اس کو میں خود احتسابی کہتا ہوں. اور میں اپنے پچھلے پروگرام میں گزشتہ پروگرام میں یہ کہہ چکا تھا کہ چین کی بیداری کا جو راز ہے وہ اسی میں ہے کہ اس وقت کے چینی رہنماؤں نے چینیوں سے یہ کہا تھا کہ ہر روز سونے سے پہلے اپنا احتساب کیا کریں کہ انہوں نے ملک کے لیے کیا اچھا کیا اور کیا برا کیا. تو جس کو تم برائی کہتی ہو میں اس کو برائی نہیں کہتا, میں اس کو خود احتسابی کہتا ہوں. اور وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جو خود اپنا احتساب خود کر سکتی ہیں.
بڑی خوبصورت آپ نے بات کی چائنا کے لحاظ سے. اگر ہم بات کرتے ہیں تو رشیا, فال آف رشیا کے بعد چائنا پہ آج تک تحقیق ہوتی ہے کہ کیا کازز تھیں, کیا کولڈ وار تھی, کیا کازز بنی کے. مگر سولوشن بیس بھی ایک چیز ہوتی ہے ہمارے پاس. انفارچونیٹلی میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہی, ہر انسان خبر پھیلا دیتا ہے مگر ہمارے پاس سولوشن کوئی نہیں ہے. ہم سولوشن بیس چیز نہیں دیتے. پیپل آر مطلب اور زیادہ فرسٹریشن کا باعث بنتا ہے.
سولوشنز کے لیے ملک میں آزادی کی فضا ہونی لازمی ہے,
ٹھیک ہے,
ناگزیر ہے. لیکن اگر تم نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی تازہ رپورٹ پڑھی ہو,
میں نے بالکل میرے سامنے پڑھی,
وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں جو سائبر کرائمز کی ایجنسی بنائی گئی ہے جس کے
چار ملکوں سے
جس کے سربراہ بھی ایک میجر جنرل صاحب ہیں, اس لیے کہ ہر ادارے کا سربراہ کوئی وردی والا ہے, وہ پاکستان کے کروڑوں عوام کی باقاعدہ سرویلنس کر رہی ہے, ان کی نگرانی کر رہی ہے. پاکستان میں ٹیلی فون کالز ٹیپ کی جاتی ہیں, میسیجز کو سروے کیا جاتا ہے, اور ای میلز تک محفوظ نہیں ہے. تو پاکستان میں تو مکمل فستائیت کا دور ہے, اور فستائیت کا یہ زہر اتنا پھیل گیا ہے کہ کل سپریم کورٹ کے چار ججوں نے, آج ہی بلکہ سپریم کورٹ کے چار ججوں نے ایک خط لکھا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے نام. انہوں نے سوال کیا ہے کہ یہ جو آپ نے پروسیجرز اور قوانین کا جو منظور کیا ہے, جس منظوری کے لیے آپ نے فل کورٹ بلایا کا اجلاس بلایا ہے, تو اس سے پہلے تو آپ نے اس خود ہی وہ تمام نکات طے کر لیے تھے, اور اس کے بعد 9 اگست کو آپ نے سرکولیٹ کر دیا وہ تمام ججوں میں کہ یہ پروسیجرز ہوں گے, یہ قوانین ہوں گے جن کے تحت سپریم کورٹ کام کرے گی. تو آپ نے تو خود ہی آئین کی خلاف ورزی کی ہے. تو بی بی
کیا چیف جسٹس کا کیا جواب؟
اس کا جواب یہ ہے کہ ملک میں چونکہ ہر ادارہ تابع فرمان ہو چکا ہے ان لوگوں کے جن کو حکومت کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اور میں بار بار اپنے ملک کے بابائے قوم کا حوالہ دیتا رہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے واحد خطاب میں جو فوجی افسران سے 14 جون 1948 کو کوئٹہ میں کیا تھا, انہوں نے صاف کہا تھا کہ تمہارا کام پالیسی بنانا نہیں ہے, پالیسی بنانا حکومت عوام کے منتخب اراکین کا کام ہے, تمہارا فریضہ صرف یہ ہے کہ تم اس پالیسی پر عمل کرو. تو پاکستان میں تو قانون کی وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں جو پاکستان کے مالک و مختار بنے بیٹھے ہیں. تو عوام سے یہ توقع رکھنا کہ وہ قانون کی پیروی کریں گے یا وہ قانون کی حفاظت کریں گے, یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ امید رکھی جائے کہ کیکر کے پیڑ پر آم اگنے لگیں گے. اور دیکھو وہ جو کہاوت ہے نا کہ ریت کا دین وہ ہوتا ہے جو حاکم کا دین ہوتا ہے. حاکم جیسی مثال پیش کرتے ہیں, جیسی مثال कायम करते हैं, रैयत उस पर अमल करती है। तो अमरीका में, तुम अमरीका की बात आकर कर रही हो, तो अमरीका में भी जमहूरियत कुशी हो रही है, जब जहां कल मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने इस आईस को, वो जो इदारा जो गैर मुल्की
इमिग्रेशन
के निगरानी करता है, उनको इख्तियार दिया है कि वो किसी भी शहरी को रोक के उससे सवाल कर सकते हैं कि तुम क्या अमेरिका में कानूनी तौर पर, जायज तौर पर रह रहे हो या नहीं रह रहे हो। लेकिन अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के 7 अराकीन हैं, 4 जजों ने हुकूमत के
खिलाफ में फैसला दिया है, रिपब्लिकन है, 4 रिपब्लिकन,
4 वो चारों वो कदामत पसंद हैं, और 3 अराकीन जो लिबरल कहे जाते हैं, लिबरल जजेज हैं, उन्होंने इस फैसले पर बहुत तनकीद की है और उन्होंने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो मुल्क के कानून की हिफाजत और निगरानी करने वाला इदारा है, उसने ही खुद अमरीका के आईन की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए कि अमरीका के आईन की पहली जो अमेंडमेंट है वो ये कहती है कि फर्द के हुकूक नाकाबिले एतराज हैं और उन पर कोई हर्फ नहीं आने दिया जा सकता। तो जहां अमेरिका जो दुनिया की सबसे कामयाब
पाकिस्तान की तरफ ये भी रहते हैं, जाहिर है पाकिस्तान की आपने अदलिया का सूरत हाल बताई, बड़ी मखदूश सूरत हाल है। आज ही 9 सितंबर को ही वो कहते हैं जज की गाड़ी जलाने का केस, शाह महमूद कुरैशी तो बरी हो गए, यास्मीन राशिद और बाकियों को 10-10 साल की कैद। तो क्या बात है, शाह महमूद कुरैशी तो हमेशा से आपको पता ही है किसका बंदा है।
नहीं,
वो शाह महमूद कुरैशी,
देखो इसी से अंदाजा होता है कि मुल्क में कानून की किस तरह से धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। एक अदालत जो वकीलों को, गवाहों को सुनने के बजाय अस खुद ये फैसला कर दे कि कौन कौन मुजरिम है और कौन बेगुनाह है, उस अदालत के मुताल्लिक क्या कहा जा सकता है।
बहुत शुक्रिया। मेरा यहाँ पे आपसे एक और सवाल है, बड़ी आपने सही बात कही, और जाहिर है पाकिस्तान के एक और सीनियर जज ने अभी चंद दिन पहले एक शाम का इवेंट है जिसको उन्होंने अटेंड किया था, उसने तमाम की तमाम ये चीजों की निशानदेही की थी जो हमारी अदलिया में गलती है, और ने कहा था कि किसी मुल्क की अगर अदलिया आजाद नहीं है, और याद से नहीं है तो एक अरसे से चलते चलते आज हम इस स्टेज के ऊपर पहुंचे हैं कि जो भी हमें आपको नजर आता है। पाकिस्तान में कहा जाता है कि सहाफियों के साथ बड़ा बुरा सलूक किया, बहुत से सहाफियों को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। मोहतरमा अलीम खान साहिबा के जलसे में एक सहाफी को बहुत लोगों ने मारा और वो सारे के सारे पीटीआई के थे, क्या गलती क्या थी उसकी? सिर्फ उसने ये सवाल किया था कि आपकी अमेरिका में जायदाद थी तो आपने वो डिक्लेयर क्यों नहीं की? हर पॉलिटिशियन का ये तो हक बनता है ना ईमानदारी के साथ चले। इमरान खान तो ईमानदारी से चला,
हर उनकी सियासतदान का ही नहीं, हर फर्द का।
देखिए वो शी इज नॉट अ पॉलिटिशियन। इमरान खान जब पोजीशन पे थे तो उन्होंने अपनी किसी बहन को कोई पोजीशन नहीं दी हुई थी, मैं उस बात को एडमायर करती हूँ, मगर अगर उनसे ये सवाल पूछा और अगर उनकी जायदाद थी और उन्होंने झूठ बोला, जायदाद को डिक्लेयर नहीं किया, जिसके नतीजे में उस बेचारे सहाफी को मार मार के बेड़ा गर्क किया, और मोहतरमा अलीमा खान साहिबा कहती हैं, पीछे रिकॉर्ड उनकी रिकॉर्डिंग हुई सुनाई देती है, ऐसे लोगों को जलसे में आने की इजाजत क्यों दी जाती है? इसका मतलब है कि दे डोंट फील लाइक बीइंग आंसरेबल।
बीबी, गलत काम गलत है, और मैं इसकी मजम्मत करता हूं, इस तरह की कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए। लेकिन इससे एक और बात की भी तस्दीक हो जाती है, वो ये कि माशरे में, पाकिस्तान के माशरे में जिस तरह से तशद्दुद फैल रहा है वो इसी वजह से है कि लोगों में फ्रस्ट्रेशन है, यासियत है, उनके हुकूक उनको नहीं मिल रहे, उनके जायज हुकूक पर सल्तनत اور حکومت ڈاکہ ڈال رہی ہے، وہ پریشان ہیں، ان کے حقوق جب پامال ہو رہے ہیں تو وہ فرسٹریشن میں اس طرح کی حرکتیں کرنے اگر کرتے ہیں تو ایک طرح سے ان کے اس طرح کے بیہیویئر کے لیے جواز پیدا ہوتا ہے.
صحیح، مگر بالکل آپ نے درست کہا، مگر یہ بھی غلط بات ہے کہ علیمہ خان صاحب اس چی عمران خان صاحب نے اپنے دور میں ان کو کوئی پوزیشن نہیں دی ہوئی تھی. مگر اگر جتنے پولیٹیشنز ہیں اگر وہ جھوٹ بولنا چاہیں اور اپنی جائیدادوں کو ظاہر نہ کریں تو دیٹ از آلسو رانگ.
سیاستدان اکیلے تو نہیں ہیں، کیا فوجی جرنیل اس سے مبرہ ہیں؟ وہ بھی جائیدادیں باہر رکھتے ہیں، انہوں نے بھی جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، جزیرے خریدے ہوئے ہیں، تو اس کا بھی اعتراف انہیں کرنا چاہیے. سیاستدانوں پر صرف کی مذمت کرنا تو میں جائز نہیں ہے. اگر غلط کام کوئی کر رہا ہے تو ہر اس شخص کی مذمت ہونی چاہیے جو پاکستان میں رہتے ہوئے باہر جائیدادیں بنا رہا ہے اور جائیدادیں خرید رہا ہے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس اتنے وسائل کہاں سے آئے؟ عمران خان تو خاندانی امیر ہے، اس کی بہن اگر امریکہ میں جائیداد خرید لیتی ہے تو وہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، انوکھی بات نہیں ہے.
لیکن میں نے انہونی کی نہیں، آپ اس کو فیور نہ کریں، معذرت کے ساتھ فیور نہ کریں، بالکل کوئی بھی کہیں جائیداد خرید سکتا ہے، بٹ اگر آپ کی پوزیشن ہے تو آپ کو ڈکلیئر کرنی ہوتی ہے. دیٹس واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. دنیا میں ابھی آج آپ کے نوٹس میں بلکہ ہوگا کہ جسٹن ٹروڈو صاحب جو ہیں جنوبی کوریا میں جا کے انہوں نے کہا، انہوں نے دنیا کے پچھلے 80 سال کا بڑا پازیٹو، بڑے اچھے لفظوں میں تذکرہ کیا. انہوں نے کہا یہ 80 سال جو تھے لسٹڈ ایز آرگنائز سسٹم تھا، دنیا قوانین کے تحت چل رہی تھی، ضوابط کے تحت چل رہی تھی، اور اب وہ ضوابط جب اٹھ گئے تو اب دنیا کے لیے، اوپر سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے تو یہ مشکل ہوگا، اس کا حل ڈھونڈا جانا چاہیے.
نہیں، وہ اگر جسٹن ٹروڈو نے یہ کہا، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ 80 برس میں دنیا قوانین کے تحت چلتی رہی ہے تو میں کہوں گا کہ انہوں نے انتہائی غلط بیانی سے کام لیا. دنیا میں کتنی جنگیں ہوئیں، دوسری جنگ عظیم کے بعد فوراً بعد 1950 میں امریکہ نے کوریا کی جنگ شروع کی، اس کے 10 سال کے بعد ویتنام میں امریکہ نے مداخلت کی، جنگ شروع کی جس جنگ میں لاکھوں ویتنامی مارے گئے. تو یہ کہنا کہ گزشتہ 80 برس میں دنیا قوانین کے تحت چلتی رہی ہے، انتہائی یہ تاریخ سے نابلد ہونے کی علامت ہے.
پرائم منسٹر آف کینیڈا نارتھ کوریا میں، اینڈ ہی چارج اراؤنڈ 100,000 فار دیٹ ایڈریس اینڈ ہی سٹیٹڈ آن دا اسٹیج. مگر ان کا یہ کہنے کا جو مقصد تھا نا، کیونکہ میں مانتی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگیں ہوئیں، مگر اب تو بالکل ہی حالات ڈفرینٹ ہیں کہ ایک پریزیڈنٹ جو ہے وہ کسی دوسرے خطے کے بارے میں اعلان کر دیتا ہے کہ یہاں رویریا بناؤں گا میں، یہ جو خلیج آف میکسیکو ہے اس کا نام چینج کرنے کا خلیج آف امریکہ. یعنی ون پرسن وانٹس ٹو ڈیسائیڈ دا فیٹ آف دا ورلڈ. اب تو بالکل ہی لاقانونیت ہو گئی،
یہی تو فستائیت ہے بی بی. اور آج کیا ہوا؟ آج اسرائیل نے قطر پہ حملہ کیا، دوحا میں اس نے حماس کے اراکین کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جو اسرائیل کی اس حرکت کی امریکہ کے صدر کی پریس سیکرٹری نے دفاع کرنے کی کوشش کی، وہ انتہائی چشم کشا بھی ہے اور مذاقہ خیز بھی ہے. میں آج ابھی یہاں آنے سے پہلے ان کی 1:30 بجے پریس کانفرنس شروع ہوئی تھی کیرولین لیوٹ کی، جو صدر ٹرمپ کی جو پریس سیکرٹری، ان سے جب سوال کیا گیا کہ کیا امریکہ کو اس کا علم تھا کہ اسرائیل قطر پر حملہ کر رہا ہے، اس قطر پر جو
جس الائی ہے امریکہ،
جو امریکہ کا جو حلیف ہے، الائی ہے، اور جس کی سرزمین پر امریکہ کی دنیا میں سب سے بڑی ایئر بیس ہے،
جی
قطر دوحہ کے باہر جو العدید ایئر بیس ہے وہ امریکہ کی دنیا بھر میں سب سے بڑی ایئر بیس ہے. اور اس کے جواب میں کیرولین لیوٹ میں کیا کہا، انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کو امریکہ کے دفاعی افسران نے، دفاعی حکام نے یہ اطلاع دی تھی کہ اسرائیل قطر پر حملہ کر رہا ہے، اور اس کے بعد، اس کے تھوڑی دیر کے بعد قطر کے وزارت خارجہ کے جو ترجمان تھے انہوں نے اس کی نفی کر دی. انہوں نے کہا کہ قطر کی حکومت کو صرف اس وقت بتایا گیا تھا کہ اسرائیل حملہ کر رہا ہے جب اسرائیل نے اس علاقے پر جہاں وہ حماس کے اراکین کو، حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنانا چاہتا تھا، راکٹ گرا دیے تھے. تو قطر کو پہلے سے کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی. یہ اس طرح کا بیان دے کے کیرولین لیوٹ نے کیا کوشش کی ہے، انہوں نے فلسطینیوں اور قطریوں کے درمیان خلیج حائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو ہم نے تو قطر کی حکومت کو بتا دیا تھا، ہم نے تو متنبع کر دیا تھا، آگاہ کر دیا تھا کہ اسرائیل تم پر حملہ کر رہا ہے، لیکن اس نے تم کو، فلسطینیوں کو یہ نہیں بتایا، آگاہ نہیں کیا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ کی قیادت ان دنوں کن عناصر کے ہاتھوں میں ہے.
بہت شکریہ. اور مگر میں اس میں یہ کہتی ہوں کہ جب ایران نے بھی حملہ کیا تھا تو ایران نے امریکہ کو بتا دیا تھا، ایران نے دوحہ قطر کو بھی بتا دیا تھا. اس میں بھی اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو یقیناً یہ اندر آپ تو رہے ہیں.
دیکھو
آج بے شک اس بات پہ انکار کرے گا مگر فرام دا بگننگ یہ کہا گیا تھا، ہر کیونکہ قطر امریکہ کا سب سے بڑا الائی ہے،
سب سے بڑا اتحادی نہیں ہے، کیوں صرف نہیں ہے بلکہ قطر کو ان مذاکرات میں کلیدی کردار ادا کرتا رہا ہے.
جو ہم اس بات کو بالکل ایسے زیوم نہیں کر سکتے کہ بھئی نہیں یہ بالکل جھوٹ ہو سکتا ہے، ڈیفینیٹلی ہمیں نہیں پتا. اندر اس وقت اندر سعودی عربیہ خاموش ہے، یونائیٹڈ عرب امارات خاموش ہے، دبئی خاموش ہے. واٹ از دا ریزن بہائنڈ اٹ؟
نہیں نہیں، تو وہ اس کا ریزن تو ہمیں معلوم ہے، اس لیے کہ عرب کی ریاستیں، خلیجی ریاستیں اب پوری طرح سے امریکہ کی غلام ہیں.
دے جسٹ وانٹ ٹو میک اے نیو ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر. اور وہ اپنی وزٹ، دے ڈونٹ پروموٹ حج اینی مور، دے ڈونٹ، دے جسٹ پروموٹ دیئر ریزورٹس کو پروموٹ کرتے ہیں، اینڈ دے وانٹ ٹو ہیو بزنس ود دی ورلڈ.
بیوی وہ امریکہ کے غلام ہیں، یہ اس قطر
دنیا امریکہ کا غلام ہے.
یہ اس قطر کے ساتھ ہوا ہے جو امریکہ میں 1.7 خرب ڈالر کی، ٹریلین ڈالر کی سرمایہ کاری کر چکا ہے، اور جس کے امیر نے ٹرمپ کے 3 مہینے پہلے جو دورہ ہوا تھا قطر،
جہاز دیا تھا،
اس میں انہوں نے 400 ملین ڈالر کا ایک لگژری جہاز ٹرمپ کو تحفے میں دیا تھا.
اچھا، میرے ایک بھائی نے ابھی، آپ 3072 آپ نے کہا کہ لیما صاحب آپ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہیں، میں مانتی ہوں، مگر لیما صاحبہ نے جو یہ لفظ کہا کہ ایسے لوگوں کو اس میٹنگ میں نہیں آنا چاہیے، خدا کا کوئی خوف کرو، خدا کا خوف کرو. یہ نہیں کہ بھئی آپ لوگ صرف یہی کہ ایک آدمی کے میں ساتھ ہوں، تو وی ہیو ٹو ریسپیکٹ پاکستان فرسٹ. کرامت صاحب، کرام بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جو بھی کہا میں نے تو کہیں انٹرپٹ نہیں کیا، اینڈ آپ کی نالج سے ہم فائدہ لینا چاہتے ہیں. آج کا قطع ہو جائے تو بہت اچھی بات.
آج کا قطع اسی پس منظر میں ہے جو عربوں کی بے حسی ہے بی بی.
ہماری عدالتوں کی بحثی کا بھی ذکر کر دیجیے.
نہیں ہمارے تو ہماری تو پوری جو فسٹائیت کا نظام ہے اس کی بحثی ہے.
ٹھیک,
ہم پر تو وہ لوگ
ارشاد
کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو ہر قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں. تو عربوں نے اپنی بحثی سے کیا ثابت کیا ہے کہ وہ ہر ذلت کو برداشت کرنے کو تیار ہیں. ہر ذلت کو دیکھو, ابراہیمک ایکارڈز کی بات ہو رہی ہے تو کسی عرب ریاست کو آج تک اتنی توفیق نہیں ہو سکی کہ اسرائیل جو مظالم کر رہا ہے, جو دنیا کی آنکھوں کے سامنے جو قیامت ڈھا رہا ہے فلسطینیوں پر, اس کے رد عمل